वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ फैला गैसीय आवरण जिसमें कुछ तरल एवं ठोस परिमाण सम्मिलित हैं वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण टिका हुआ है, अर्थात वायुमंडल के प्रत्येक तह पर नीचे की तरफ लगने वाला गुरुत्व बल गैस के ऊर्ध्वाधर दबाव से संतुलित हो जाता है। यही कारण है कि वायुमंडल न तो ऊपर जा रहा है या न तो धरातल पर गिर रहा है। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के जीवों का अस्तित्व इस प्रकार वायुमंडल के कारण ही संभव होता है, अन्यथा पृथ्वी भी चंद्रमा के समान वीरान होती। वायुमंडल का आधा से अधिक परिमाण 5.5 किलोमीटर के नीचे तथा लगभग 99% 30 किलोमीटर के नीचे पाया जाता है। वायुमंडल में वायु का वितरण समान नहीं है। नीचे की तरफ वायु का भार अधिक जबकि ऊंचाई के साथ वायु भार कम होता जाता है। सबसे ऊपर पहुंचने पर विरल वायु पाई जाती है। वायुमंडल की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फियर। वर्तमान वायुमंडल में मौजूद तत्व, जलवायु, उद्गार, गर्म झरनों तथा ठोस पदार्थों एवं वनस्पतियों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निकले पदार्थों से बने हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले मुख्य तत्व ज्वालामुखी उद्गार से निकलते हैं। यद्यपि पृथ्वी की उत्पत्ति 4000 मिलियन वर्ष की मानी जाती है, परंतु वर्तमान वायुमंडल का स्वरूप कैम्ब्रियन अवधि अर्थात 580 मिलियन वर्ष पहले से माना जाता है। भूमि, जल, वायु, वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अंतर्क्रिया के फलस्वरूप वायुमंडल में परिवर्तन आता रहता है। उदाहरणार्थ चट्टानों के अपक्षरण, ईंधन के जलने, वनस्पति के दबने और रासायनिक क्रिया के बाद दूसरे रूप में बदलने, सभी जीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के बाद ये तत्व वायुमंडल में चले जाते हैं एवं वायुमंडल के स्वरूप को बदलते रहते हैं। वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर। सामान्य रूप में वायु कई प्रकार की गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण होती है। यद्यपि वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है, परंतु उसमें 99% केवल वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर। सामान्य रूप में वायु कई प्रकार की गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण होती है। यद्यपि वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है, परंतु उसमें 99% केवल नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का ही रहता है, जिसमें नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% होता है। शेष 1% का प्रतिनिधित्व आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ओजोन आदि भारी तथा हल्की गैसों द्वारा होता है। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तथा हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तथा इससे अधिक ऊंचाई पर हल्के गैस मिलते हैं। जलवायु के दृष्टिकोण से जलवाष्प का सर्वाधिक महत्व होता है। भूतल पर जलभागों, मिट्टियों तथा वनस्पतियों के वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में वाष्प पहुंचती है। वायु में इसकी मात्रा अधिकतम रूप में 5% रहती है। वाष्प की मात्रा तापमान पर आधारित होती है। उष्णतर कटिबंध में धरातलीय वायु में वाष्प का प्रतिशत 2.6%, 50 डिग्री लैटिट्यूड पर 0.9% तथा 70 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास 0.2% रहता है। भूतल से 5 किलोमीटर तक वायुमंडल वाले भाग में समस्त वाष्प का 99% भाग रहता है। ऊपर जाने पर वाष्प की मात्रा घटती जाती है। गैस तथा वाष्प के अलावा वायुमंडल में कुछ सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं। इनमें धूलिकण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी स्थिति के कारण वायुमंडल में अनेक घटनाएं घटती रहती हैं। सूर्य से आने वाली किरणों में प्रकीर्णन इन्हीं कणों के द्वारा होता है, जिस कारण आकाश का रंग नीला, सूर्योदय तथा सूर्यास्त एवं गोधूलि के नयन विराम रंग संभव हो पाते हैं। नमक एवं धुएं के कण जलवाष्प को आकृष्ट करने के कारण आर्द्रता ग्रही नाभिक हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हुआ करते हैं, जिनके चारों तरफ संघनन के कारण जलबूंदों का निर्माण होता है। वर्षा, कोहरा, बादल आदि इन्हीं के प्रतिफल हुआ करते हैं। नाइट्रोजन का मुख्य कार्य वायुमंडल में विद्यमान ऑक्सीजन को हल्का करना है, जिससे ज्वलन प्रक्रिया एवं ऑक्सीडेशन चलता रहे। ओजोन सूर्य द्वारा निकली पराबैंगनी किरणों को शोषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में विशेष भूमिका निभाती है। वायुमंडल का स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फियर। वर्तमान समय में वायुमंडल की जानकारी प्राप्त करने के लिए राकेटयान, रडार, स्पुतनिक आदि नवीन उपकरणों की सहायता ली जाती है। इन आधारों पर वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। पहला, रासायनिक गुण के आधार पर वायुमंडल का स्तरीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एटमॉस्फेरिक स्ट्रेटिफिकेशन। फर्स्ट लेयर सममंडल होमोस्फीयर। सममंडल की रचना मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 20% से हुई है। शेष भाग की रचना कार्बन डाइऑक्साइड 0.033%, आर्गन 0.034%, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, हाइड्रोजन आदि गैसों से हुई है। सममंडल की ऊंचाई सागर तल से 90 किलोमीटर तक बताई जाती है। नाइट्रोजन यद्यपि उदासीन तत्व मानी जाती है, क्योंकि यह सीधे किसी पदार्थ से मिलकर कोई मिश्रण नहीं बना पाती। ऑक्सीजन सभी पदार्थों से ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा मिल जाती है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड भू विकिरण तथा सौर विकिरण को सोख कर वायुमंडल के निचले स्तर को गर्म करने में मदद पहुंचाती है। मनुष्य जो लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जलाता है, उससे बड़ी मात्रा में CO2 गैस निकलती है। विषम मंडल हेट्रोस्फीयर। इस मंडल की ऊंचाई 90 से 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसमें गैस के विभिन्न चार परतें पाई जाती हैं। आणविक नाइट्रोजन परत। पहला, इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं तथा इसकी ऊंचाई 90 से 200 किलोमीटर तक है। दूसरा, आणविक ऑक्सीजन परत। इसमें ऑक्सीजन अणु पाए जाते हैं, जिसकी ऊंचाई 200 से 1100 किलोमीटर तक है। तीसरी लेयर हीलियम परत। इसमें हीलियम के अणु पाए जाते हैं तथा इसका विस्तार 1100 से 3500 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। चौथा, आणविक हाइड्रोजन परत। इसमें हाइड्रोजन के अणु मिलते हैं तथा इसकी ऊपरी सीमा की निश्चित ऊंचाई नहीं बताई जा सकती, परंतु सामान्य तौर पर इसका विस्तार 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है। बी तापमान तथा वायुदाब के आधार पर वायुमंडल का स्तरीकरण। तापमान तथा वायुमंडल के आधार पर वायुमंडल में परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, ताप मंडल आदि ऊर्ध्वाधर विभाजन किए जाते हैं। पहला, परिवर्तन मंडल ट्रोपोस्फीयर। वायुमंडल का निचला सतह परिवर्तन मंडल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर या 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट के साथ घटता जाता है। इस तापमान की दर को नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। तापमान के लंबवत वितरण में परिवर्तन पाए जाने के कारण ही इसको परिवर्तन मंडल कहा जाता है। परिवर्तन मंडल की सामान्य ऊंचाई 15 किलोमीटर निर्धारित की गई है। इस मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तथा मध्य अक्षांशों पर 12 किलोमीटर मिलती है। संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 75% मात्रा इस मंडल में ही निहित है। मध्य अक्षांशों का 75% अर्थात 75% तथा निम्न अक्षांशों के वायुमंडल का 90% परिमाण इसी मंडल में विद्यमान है। बादल, कोहरा, ओला, तुषार, मेघ गर्जन, तूफान एवं संवहनी गति इसी मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है। अधिकांश जलवाष्प, धूल कण एवं भारी गैसें इसी तह में मिलती हैं। संवहनी तरंगों एवं विक्षुब्ध संवहन के कारण ही इस मंडल को क्रम से संवहनी मंडल, कन्वेक्शनल जोन तथा विक्षोभ मंडल टर्बुलेंट जोन कहा जाता है। तापमान ह्रास दर, तापमान ह्रास दर उस समय तक जारी रहता है जब तक कि तापमान -50 डिग्री या -60 डिग्री सेल्सियस न पहुंच जाए। जिस ऊंचाई पर पहुंचकर तापमान पतन दर समाप्त हो जाता है उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। इस मेखला की मोटाई 1.5 किलोमीटर बताई गई है। रिचर्ड जे ओडवे 1966 ने ट्रोपोपॉज में 25 से 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर प्रत्येक गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम के कारण उत्पन्न रिक्त स्थान को इंगित किया है। दूसरा, समतापमंडल स्टेटोस्फीयर। समतापमंडल ट्रोपोपॉज के ऊपर विस्तृत है। इसकी ऊंचाई ट्रोपोपॉज के ऊपर 15 से 50 किलोमीटर के बीच आंकी गई है, जबकि कुछ लोग इसकी ऊपरी सीमा 80 किलोमीटर तक बताते हैं। समतापमंडल की अधिकतम ऊंचाई ध्रुवों पर मिलती है। कभी कभी भूमध्य रेखा के ऊपर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसकी ऊंचाई में अक्षांशों एवं ऋतुओं के साथ परिवर्तन होता है, परंतु मौसमी हलचल नहीं पाया जाता। इसके मध्य में सल्फेट के कण एकत्रित मिलते हैं। इस मंडल में धूल कणों एवं जलवाष्प की लगभग नगण्यता होती है। समताप मंडल में तापमान की स्थिरता तथा परिवर्तन के विषय में भी पर्याप्त मतांतर है। क्रिचफील्ड के अनुसार समताप मंडल की ऊपरी सीमा मध्य अक्षांशों पर 25 किलोमीटर तक होती है तथा ट्रोपोपॉज से इस सीमा तक की ऊंचाई के साथ तापमान प्रायः समान रहता है। स्ट्रॉलर के अनुसार समताप मंडल की ऊपरी सीमा 50 किलोमीटर तक होती है तथा ट्रोपोपॉज के ऊपर तापमान में सना सना धीरे धीरे यानी वृद्धि होती रहती है तथा 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 0 सेंटीग्रेड या -0 सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है। इस सीमा को स्टेटोपॉज कहते हैं। इसकी ऊंचाई में मौसम के अनुसार अंतर आता जाता है। ओजोनोस्फीयर समताप मंडल के निचले भाग में 15 किमी से 35 किमी के बीच ओजोन गैस का मंडल पाया जाता है। ओजोन गैस सोलर रेडिएशन रेज को सोख लेती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण ऑक्सीजन के अणु ओजोनोस्फीयर समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का मंडल होता है। ओजोन गैस सौरयक परावैग्निक किरणों को सोख लेती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण ऑक्सीजन के अणु में टुटाव होता है तथा इस तरह अलग हुए परमाणु अलग अलग रूप में अन्य ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन गैस स्वयं में अस्थिर गैस होती है तथा इसका विनाश भी हो सकता है। समीकरण के रूप में ऑक्सीजन का जब ब्रेकअप होता है तो ऑक्सीजन के दो अणुओं ने टूटती है। ये अणु ऑक्सीजन के एक अन्य अणु से मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन का जब ऑक्सीजन के एक अन्य टूटे हुए अणु से सम्मिलन होता है तो ऑक्सीजन के दो अणु पुनः बन जाते हैं। इस ऑक्सीजन का ओजोन तथा इस प्रकार इस ऑक्सीजन का ओजोन तथा ओजोन का ऑक्सीजन में रूपांतरण फोटोकेमिकल क्रियाओं द्वारा होता है। 35 किलोमीटर के पास ओजोन मिश्रण अनुपात सर्वाधिक होता है तथा ओजोन का सर्वाधिक घनत्व 20 से 25 किलोमीटर के मध्य रहता है। इस मंडल की खोज सर्वप्रथम टिजरेंस डीबोल्ट ने 1902 में की थी। तीसरा, मध्य मंडल मेजोस्फियर। स्ट्रेटोपॉज के ऊपरी स्तर सतह को मध्य मंडल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई सामान्यतः 50 से 90 किलोमीटर के बीच होती है। मेजोस्फीयर में सर्वप्रथम तापमान बढ़ता है परंतु उसके बाद घटने लगता है तथा 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -90 डिग्री हो जाता है। इसके बाद तापमान में पुनः वृद्धि प्रारंभ हो जाती है जिसको मीसोपॉज लेयर कहते हैं। इस तह में उल्का जलते हैं एवं टूटकर धूल में परिवर्तित होते रहते हैं। धूल कणों के चारों तरफ बर्फ के रवे जमकर बादल बन जाते हैं। इस मंडल में दबाव बहुत कम हो जाता है जिसकी मात्रा 1 मिली बार 50 किलोमीटर पर तथा 0.1 मिली बार 90 किलोमीटर पर पाया जाता है। चौथा, तापमान मंडल थर्मोस्फीयर। मेसोपॉज के ऊपर तापमान तेजी से बढ़ने लगता है तथा 1700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान लगभग 250 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास मिलता है। इस मंडल को तापमंडल कहा जाता है। वायु का घनत्व इतना कम रहता है कि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इस तह में इतने उच्च तापमान के बावजूद भी एस्ट्रोनॉट का बाहर निकला हाथ गर्मी महसूस नहीं करेगा या बिना ढके आदमी जम जाएगा। तापमंडल में ऊर्जा का आदान प्रदान सिर्फ एक दिशा अर्थात आदमी से दूर की तरफ होता है। इसका कारण अणुओं का अधिक दूरी पर स्थिर होना है। उपर्युक्त दशा में उत्पन्न तापमान को काइनेटिक टेम्परेचर कहा जाता है। यह तापमान धरातल के तापमान के समान नहीं होता। आयनोस्फीयर धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयनोस्फीयर कहते हैं। इस भाग में विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती रहती हैं। कॉस्मिक रेज का परिलक्षण यहीं पर होता है। आयनोस्फीयर में पुनः तीन उपमंडल पाए जाते हैं। सबसे निचले भाग को डी सतह जिसकी ऊंचाई 60 से 99 किलोमीटर का होता है को कहते हैं डी सतह। इस परत से दीर्घ तरंगों का परावर्तन होता है। यह मध्यम तथा लघु तरंगों को सोख लेती है। डी सतह के ऊपर ई सतह का विस्तार 99 से 150 किलोमीटर तक मिलता है। इसको केनले हेरसाइड लेयर भी कहते हैं। इस सतह में आयन का सांद्रण सर्वाधिक होता है। रेडियो की मध्यम तरंगें यहाँ से परावर्तित हो जाती हैं। सबसे ऊपरी भाग को यफ सतह कहते हैं जिसका विस्तार 150 किलोमीटर से 360 किलोमीटर तक होता है। इस सतह से रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन लेयर। यदि आयनोस्फीयर की स्थिति न होती तो रेडियो तरंगें भूतल पर न आकर आकाश में असीमित ऊंचाई तक चली जाती। सूर्य के विकिरण द्वारा इस मंडल के भाग आयनीकृत होते रहते हैं एवं इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। जब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन गैस के परमाणुओं से मिलते हैं तो विद्युत प्रकाश उत्पन्न होती है। यह प्रकाश कई रंगों में पाई जाती है। इन्हीं को नॉर्थ पोल में अरोरा बोरेलियासिस तथा साउथ पोल में अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। तीसरा चैप्टर सूर्यताप इंसुलेशन। सूर्यताप वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौरिक ऊर्जा को ही सूर्यताप कहते हैं। त्रिवर्था के शब्दों में लघु तरंगों के रूप में संचालित जिनकी लंबाई 1/250 से 1/6700 मिलीमीटर और 186,000 माइल पर सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई सौरिक ऊर्जा को सौर विकिरण या सूर्यताप कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान 11,000 डिग्री फारेनहाइट या 6,000 डिग्री सेल्सियस तथा केंद्रीय भाग का तापमान 5 करोड़ डिग्री फारेनहाइट ताप होता है। सूर्य की ऊर्जा का प्रधान स्रोत उसका आंतरिक भाग है, जहां पर अत्यधिक दबाव तथा उच्च तापमान के कारण नाभिक की फ्यूजन के कारण हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतर होने से ऊष्मा का जनन होता है। यहाँ ऊष्मा परिचालन तथा संवहन द्वारा सूर्य की बाहरी सतह तक पहुँचती है। सूर्य की बाहरी सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटॉन कहते हैं। इस तरह सूर्य की बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। इस सतह से ऊर्जा का विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा विकिरण होता है। सूर्य के धरातल के प्रत्येक वर्ग इंच से विकिरण ऊर्जा 10 1 लाख अश्वशक्ति के बराबर होती है। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। इस तरह का पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। इसे सोलर कांस्टेंट कहते हैं। इस तरह सौरिक स्थिरांक सूर्य के विकिरण की इस तरह सोलर कांस्टेंट सूर्य के विकिरण की दर को प्रदर्शित करता है, जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी, जिसको 2 लैंजली भी कहते हैं। सूर्य से 93 मिलियन माइल औसत दूर स्थित पृथ्वी सौरिक ऊर्जा का केवल 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती है, परंतु यह स्वअल्प मात्रा भी 23×10^10 अश्वशक्ति के बराबर हो जाती है। प्रत्येक वस्तु जिसमें ऊष्मा होती है विकिरण करती है, तथा नियमानुसार जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होती है उसकी तरंगें उतनी ही छोटी होती हैं। यही कारण है कि सूर्य से विकिरण द्वारा निकली ऊष्मा लघु तरंगों के रूप में होती है तथा प्रति सेकेंड 186,000 माइल की गति से भ्रमण करती है। सूर्यताप वितरण को प्रभावित करने वाले कारक डिटर्मिनेंट ऑफ इंसुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पहला, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सूर्य की किरणों का कोण, एंगल एट विच द सन रेज स्ट्राइक ऑन द अर्थ। पृथ्वी के गोल आकार एवं अक्ष पर 66 1/2 झुके होने के कारण पृथ्वी सूर्य के किरणें सभी भागों पर सीधी नहीं पड़ती। जब किरणें लंबवत पड़ती हैं तब उनको वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, तथा जब तिरछी पड़ती हैं तो उनको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अतः ऐसा करने में पहली दशा में सूर्यताप की कम मात्रा नष्ट हो पाती है, लेकिन दूसरी दशा में यह मात्रा अधिक नष्ट हो जाती है। इसी कारण तिरछी किरणों के पड़ने वाले भाग में सूर्यताप कम मिलता है। पृथ्वी के अज के झुकाव के कारण सूर्य की किरणों को एक एक संक्रांति से दूसरे पर जाने पर 47 डिग्री तक परिवर्तन करना पड़ता है। यद्यपि इस परिवर्तन का प्रभाव पृथ्वी के वार्षिक सूर्यताप पर नहीं पड़ता, वरन अक्षांशीय एवं ऋत्विक सूर्यताप वितरण में यह प्रभाव परिलक्षित होता है। जब पृथ्वी का अच्छ कच्छ सतह के लंबवत होता है तो ध्रुव सूर्यातप नहीं प्राप्त कर पाते, जबकि भूमध्य रेखा पर अधिकतम सूर्यातप प्राप्त होता है। दूसरा, दिन की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द डे। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, यह लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर तथा वर्ष भर में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। पृथ्वी की इस दैनिक तथा वार्षिक गति के कारण मौसमों एवं सूर्यातप की मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। भूमध्य रेखा के पास दोनों तरफ दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है। सूर्यातप की मात्रा दिन एवं रात की अवधि से ही नियंत्रित होती है। जिस स्थान पर दिन लंबा होगा वहां सूर्यातप की मात्रा अधिक प्राप्त होगी तथा जिन भागों में रात्रि लंबी होती है वहां सूर्यातप की मात्रा कम एवं भूविकिरण अधिक होता है। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के समय जब उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर 6 मास का दिन तथा 6 मास की रात होता है, उस समय भी सूर्यातप की अधिकतम मात्रा ध्रुवों पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तीसरा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। पृथ्वी अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस कारण उसकी सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता रहता है। औसत रूप में पृथ्वी सूर्य से लगभग 93 मिलियन माइल्स 149 मिलियन किलोमीटर दूर है, परंतु निकटतम दूरी 91.5 मिलियन माइल्स है। इस स्थिति को उपसौर पेरिहिलियन कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। इसकी विपरीत 4 जुलाई को एपिहिलियन होती है। एपिहिलियन की स्थिति होती है जब पृथ्वी सूर्य से 94.5 मिलियन माइल दूर होती है। उपर्युक्त दूरी के अनुसार 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा 7% अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, अर्थात जनवरी में जुलाई की अपेक्षा धरातल पर 4 डिग्री ताप अधिक मिलता है। जनवरी महीने में पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल की बजाय शीत ऋतु होती है। इसी तरह जुलाई महीने में दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल के बजाय ग्रीष्म ऋतु होती है। इसका कारण दूरी का प्रभाव दिन की अवधि एवं सूर्य की किरणों के तिरछेपण के कारण नगण्य हो जाता है। जनवरी के महीने में उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाली सर्दी की मात्रा 7% कम तथा दक्षिणी गोलार्ध में 7% गर्मी अधिक हो जाती है। 4 जुलाई की दशा में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी 7% कम तथा दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी 7% बढ़ जाती है। चौथा, सौर कलंक, सन स्पॉट्स। सूर्य तल पर पाए जाने वाले धब्बे या कलंक भी सूर्यातप की मात्रा को कुछ हद तक प्रभावित करते हैं। सूर्य तल पर इन धब्बों की संख्या चक्रीय क्रम में घटती बढ़ती रहती है तथा इनका एक चक्कर 11 वर्षों में पूरा होता है। जब सौर कलंक की संख्या बढ़ती है तो सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है एवं संख्या कम होने पर सूर्यातप की मात्रा भी कम हो जाती है, परंतु सौर कलंक एवं सूर्यातप के संबंधों की विशद जानकारी प्राप्त नहीं है। सौर कलंक से संबंधित सौर स्थिरांक में 1 से 2% का अंतर पाया जाता है। पांचवा, स्थल तथा जल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर। सूर्यातप की मात्रा स्थल एवं जल से भी प्रभावित होती है। स्थल भाग जल के अपेक्षा जल्दी गर्म होते हैं, क्योंकि विकिरण की किरणें जमीन की गहराई केवल 1 मीटर तक ही प्रवेश कर पाती है। इन किरणों के जल में अधिक गहराई अर्थात 20 मीटर तक प्रवेश करने के कारण जल देर से गर्म होता है। अतः जल स्थली भाग जल्दी गर्म एवं ठंडे तथा जली भाग देर से गर्म तथा ठंडे होते हैं। इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप समुद्र से दूर स्थित स्थान गर्मियों में अधिक गर्म तथा सर्दियों में अधिक ठंडे हो जाते हैं। जल के ऊपर सूर्यातप की कुछ मात्रा वाष्पीकरण में भी समाप्त हो जाती है, लेकिन यह मात्रा स्थली भागों पर कम होती है। छठा,
धरातली बनावट सरफेस नेचर। धरातली बनावट भी सूर्यातप के वितरण को लघु पैमाने पर प्रभावित करता है। उदाहरण स्वरूप चिकनी मिट्टी के प्रदेश सूर्यातप का अवशोषण कम करते हैं, जबकि बालू एवं पत्थर वाले प्रदेश या काली मिट्टी के प्रदेश सूर्यातप का अधिक अवशोषण करते हैं। इस प्रकार घने वनस्पति वाले या बर्फीले प्रदेशों में अवशोषण कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर किरणें परावर्तन द्वारा वायुमंडल में लौट जाती हैं। ऊंचाई पर हवा की कम मात्रा के कारण स्वच्छ आकाश वाले दिन ऊंचाई पर स्थित स्थान समुद्र तल की अपेक्षा अधिक सूर्यातप प्राप्त करते हैं। सातवां, वायुमंडल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फियर। सूर्य की किरणों को वायुमंडल के पारदर्शक मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है, जिस कारण उनका प्रकीर्णन, परावर्तन तथा अवशोषण होता रहता है। सूर्य की किरणों का प्रकीर्णन, परावर्तन एवं अवशोषण वायुमंडल की पारदर्शिता, सूर्य की किरणों के पृथ्वी पर बने कोण एवं अवरोधक पदार्थ पर निर्भर करता है। यदि अवरोधक कणों का व्यास विकिरण की तरंगों से छोटा होता है तो ये तरंगे प्रकीर्णन द्वारा चारों तरफ फैल जाती हैं। अतः इस प्रकार लघु तरंगों का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। जब अवरोधक कणों का व्यास विकिरण की तरंगों से बड़ा होता है तो इन तरंगों का परावर्तन हो जाता है, अतः दीर्घ तरंगों का ही परावर्तन होता है। इस परावर्तन के फलस्वरूप विकिरण की कुछ तरंगें वापस अंतरिक्ष में लौट जाती हैं एवं कुछ आकाश में फैल जाती हैं। वायुमंडल में परावर्तन एवं प्रकीर्णन के द्वारा जो सौर ऊर्जा पृथ्वी सतह पर पहुंच जाती है उसको विसरित नीला प्रकाश, डिफ्यूज्ड ब्लू लाइट या डिफ्यूज्ड डे लाइट कहते हैं। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प एवं ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें लगभग 19% किरणों का अवशोषण कर लेती हैं। सूर्यातप की जो मात्रा बादल, धूल कण, वायु के अणु एवं पृथ्वी तल के द्वारा परावर्तन तथा प्रकीर्णन के फलस्वरूप लौट जाती हैं उसकी धवलता एल्बिडो कहते हैं। सौर विकिरण का लगभग 35% धवलता के रूप में वापस जला जाता है। ध्रुवीय प्रदेशों में धवलता की मात्रा भूमध्य रेखीय प्रदेशों की तुलना में अधिक होती है। धरातल पर सूर्यातप का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन ऑन द अर्थ। सूर्यातप की सर्वाधिक मात्रा विषुवत रेखा के पास होती है, क्योंकि यहाँ पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है तथा सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, परंतु सूर्य के दक्षिणायन एवं उत्तरायण की स्थितियों के कारण अत्यधिक सूर्यातप मंडल विषुवत रेखा के दोनों ओर सरकता रहता है। विषुवत रेखा से सूर्यातप ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। ध्रुवों पर यह इतना कम हो जाता है कि विषुवत रेखा का केवल 40% ही प्राप्त हो पाता है। इस तरह ध्रुवीय क्षेत्र न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त करते हैं। इक्विनास के समय दोनों गोलार्धों में सूर्यातप का वितरण प्रायः समान रहता है। इसके विपरीत कर्क तथा मकर संक्रांति के समय दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के बीच सूर्यातप के वितरण में पर्याप्त असमानता होती है। कर्क संक्रांति के समय जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होता है, ध्रुवों पर दिन की अवधि लंबी होने पर भी सूर्यातप सर्वाधिक नहीं हो पाता है, अपितु अधिकतम सूर्यातप 40 डिग्री अक्षांश के पास होता है। धरातलीय तापमान निम्न मध्य अक्षांश वाले भागों में सर्वाधिक होता है, न कि भूमध्य रेखा के पास। यदि ग्लोब पर वार्षिक सूर्यातप के अक्षांशीय वितरण पर दृष्टिपात किया जाए तो 3 स्पष्ट मंडल दृष्टिगत होते हैं। पहला निम्न अक्षांशीय या अनवर्ती मंडल, इनका विस्तार कर्क तथा मकर रेखाओं के बीच पाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के कारण इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण वर्ष में 2 बार अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त करता है। इसको छोड़कर यह भाग साल भर ऊंचा सूर्यातप प्राप्त करता है तथा ऋतुगत परिवर्तन नगण्य रहता है। बी मध्य झांसी मंडल। इसका विस्तार 23 डिग्री से 66 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इस मंडल के प्रत्येक स्थान पर साल भर में एक बार अधिकतम तथा एक बार न्यूनतम सूर्यातप कर्क तथा मकर संक्रांति के अनुसार प्राप्त होता है। वर्ष के किसी भी समय सूर्यातप अनुपस्थित नहीं हो पाता है, अतः यह कभी शून्य नहीं होता है, परंतु ऋतुवत असमानताएं अधिक हो जाती हैं। सी ध्रुवीय मंडल। ध्रुवों के चतुर्दिक वर्ष में एक बार अधिकतम तथा एक बार न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त होता है, परंतु वर्ष के कुछ समय में सूर्य की प्रत्यक्ष किरण के अभाव में सूर्यातप शून्य हो जाता है। वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होना, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। वायुमंडलीय वायु प्रत्येक रूप से बहुत कम सूर्यातप ग्रहण करती है एवं गर्म होती है, बल्कि यह वायु भूभ विकिरण से अधिक गर्म होती है। पृथ्वी के गर्म होते ही पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म होने लगती है। पहले की वायु अपने स्थान से हट जाती है एवं दूसरी वायु पृथ्वी के संपर्क में आती है एवं गर्म होती है। वायुमंडलीय वायु निम्नलिखित प्रक्रियाओं के द्वारा गर्म एवं ठंडी होती है। पहला, वायुमंडलीय दबाव। Yeah.